సమ్నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినా కామదం మోక్షదం చైవోంకారాయ నమో నమః. అవిరల శబ్ద ఘనౌగ ప్రక్షాళిత సకల భూతల కళంకా విని విరూపాక్ష తీర్థా సరస్వతీ హరతి నో దురితం. అజ్ఞాన తిమిరాంధానాన్ జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. పరం గురుభ్యో నమః. పరం పరాచార్య గురుభ్యో నమః. సకల కలుష విధ్వంసకం శేషాం పరివర్ధకం ధర్మ సంబంధకం భవ్యజీవమన ప్రతిబోధకారకమిదం శాస్త్రం శ్రీ కార్తికేయానుపేక్షా నామ ధ్యేయం. అస్తు మూల గ్రంథకర్తారా శ్రీ సర్వజ్ఞదేవా సదుత్తర గ్రంథకర్తారా శ్రీ గణధర దేవా ప్రతిగణధర దేవాస్తేషాం వచనానుసారమాసాద్య శ్రీమత్ కార్తికేయ స్వామినా విరచితం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమోగణి మంగళం కుందకుందాచూ జైన ధర్మోస్తు మంగళం. సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణాం జైనం జయతు శాసనం. కోటీశుతం ద్వాదశైవ కోట్యో లక్షాని చైతిస్రదికాని చైవ పంచాశదశైక సహస్ర సంఖ్యామేత శ్రుతం పంచ పదం నమామి. అరిహంత భాషయత్ సంగణహర దేవీ గంధ్యం సమ్మం పణమామి వత్తియుక్తో సుజనానమో వయం శిరసా. ఇచ్చామి భంటే సుడిభక్తి కావసకో కోటు సాలోచన్ అంగుగంగ పైనే పావునే పరియం సుత్ పరిమాణి. ఓ గుముగై చుడియా చే సుత్వత్రయే త్రిధం కాయం ప్రాణిత్పాలమంతిం పూజని వందామి నమంసామి. దుఃఖ కోపం కోయిలా సుదైనం సమాయం నందిని సంపత్తి రోమధ్యం. నమస్తు పూర్వాణి శ్రీ స్వాధ్యాయ వేలం శ్రీమద్ ఆచార్య భక్తి కాయ సర్వం కరోమి. పారగేభ్యా సపరమద్ విభావనా పటుమతీభ్యా సుచరిత్తపో నిధిభ్యో నమో గురుభ్యో గుణగురుభ్యా. ఛత్తీస్ గుణ సమ్మగ్గే పంచవిహాచార కరణ సందర్శే శిష్యానుగ్రే కుశలే ధమ్మైర్య సదా వందే. గురుభక్తి సంజలేనయా తరంతి సంసార సాయరం ఘోరం చిన్నంతి అక్షకమ్మం జన్మం మరణం న పావేంతి. ఏ నిత్యం వ్రతమంత్ర హోమ నిరత ధ్యానాగ్నిహోత్రాకులా షట్కర్మాభిరతా సపోధన ధనా సాధు క్రియా సాధువా శీల ప్రావరణా గుణ ప్రహరణా చంద్రార్పుతేజోధికా మోక్షద్వారక పాఠ పాఠనుభతా తీనంతు మాం సాధువా. గురువా పాన్సులు నిత్యం జ్ఞానదర్శన నాయకా చారిత్రాణో గంభీరా మోక్ష మార్గోపదేశుకా. ఇచ్చామి ఐరుక్తి కావసోచన మనాను సంబంధించిన సమీకరిస్తానం సంచారణం ఆయర్యాణం ఆయురాధీసనాను ఉపదేశానం అధ్యాయాణం తిరియంగుల పాలంజయాణం సౌసాహునం ప్రయాణించుకాలం అంతే పూజే వందామి నమస్వామి. దుఃఖ కోకమ్మ కోయిలాసుదేం సమయం జన్మం సంపత్తి ఓమధ్యం. తిహువనతిలయం దేవం వందిస్తా తిహువనింద పరిపూజ్యం ఓషం మణిపేహావో భవ్యజనానంద జననీ. బోలే భగవాన్ మహావీర్ స్వామికి, ఆచార్య కుందకుంద భగవానికి, ఆచార్య గురు విద్యాసాగర్ ముని మహారాజుకి, అనుప్రేక్షా కే బారే మే అపన్ జాన్ రహే హై. అనుప్రేక్షా అప్ని ఏక్ వినమ్ర కోషిష్ హై वास्तविकता को जानने की. किसी चीज की वास्तविकता क्या है, जब इसको जानने का बार बार हम प्रयास करते हैं, उसका नाम अपन ने अनुप्रेक्षा रखा है. और अनुप्रेक्षा में चिंतन विशेष रूप से किया जाता है. और जब कोई बात चिंतन में आने लगती है, कोई बात भावना में आने लगती है, तो फिर जीवन में परिवर्तन जरूर होता है. इसलिए अनुप्रेक्षा जो है जीवन को परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम भी अनुपेक्षा है, जिससे कि जीवन पूरा परिवर्तित हो जाए. जैसी हमारी भावना होती है, या कि जैसा हमारा पहले तो होता हमारा विचार, जैसा हमारा विचार होता है वैसी हमारी भावनाएं बनना शुरू होती, उसके अनुसार ही फिर हमारा जीवन चलता है, बाहर में दिखाई देने लगता है, व्यवहार में आना शुरू हो जाता. जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इस तरह की स्थिति है, वही भावना है. मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि छह भावना के बारे में तो मालूम पड़ता है शुरू में, कि भाई हमने विचार कर लिया कि चीज अनित्य है, टिकने वाली नहीं है, एक दिन टूट करके गिर जाएगी. ठीक है, ये भी चिंतन की बात थी, वो भी कर ली हमने. उसके बाद अशरण, हमने सोचा था कि आखिरी समय जिंदगी में कोई अगर पार्टिसिपेट करेगा थोड़ा बहुत, तो दो चार सांसें अगर कम पड़ जाएंगी हमारी तो दे देगा. लेकिन हमें बाद में मालूम पड़ा मरते समय कि कोई सांस का बंटवारा जो हमारे दिन में आई थी वही हमारी रही, किसी दूसरे ने दे ही नहीं पाई. ये भले हो सकता है कि पानी आखिरी में बेटे ने पिला दिया हो एक गिलास, आज तो वो भी संभव नहीं है. तो शरण हम कहां कहां खोज रहे थे, दुनिया की किसी चीज में हमको शरण समझ में नहीं आई. ठीक है, ये भी हमने सोच लिया, ये भी सोचने जैसी बात है, सोच ली. उसके बाद जो है आपने कहा संसार के बारे में सोचो, हमने संसार के बारे में भी सोच लिया. तीसरी भावना हो गई संसार भावना हो गई. उसके बाद जो है हम अकेले हैं, एकत्व भी हो गया, कोई दूसरा हमारा नहीं है, अन्यत्व भी हो गया. अशुचि शरीर ठीक नहीं है, गंदा है शरीर, ये भी हमने सोच लिया. ये सारी बातें तो सोचने की है. लेकिन फिर आप कह रहे हो कि आश्रम, आश्रम में सोचने वाली बात क्या है, संवर में सोचने वाली बात क्या है, निद्रा में सोचने वाली बात क्या है, इनको कैसे आपने अनुपेक्षा कह दिया. आप पूरी चर्चा तो ये कर रहे हैं, देखिए मैं आपकी तरफ से सारी बात कर रहा हूं, आप ये मान के चलिए. ऐसा अपने अंदर एक क्वेश्चन उठ सकता है, ऐसा प्रश्न मन में बन सकता है कि आश्रम में तो आपने ये कहा कि इतने प्रकार से आश्रम होता है और इसको रोकना चाहिए, और उसके रोकने का नाम संबर है, और जब संबर हो जाता है तो जिन भावों के द्वारा संबर होता है उन्हीं के द्वारा बने हुए कर्मों की निद्रा भी होती है. अगर संबर पूर्वक निद्रा की जाए, अभी तो आपने निद्रा की अगर चर्चा है, तो वैसे तो उदय में आता है और अपना फल देकर के चला जाता है. वो तो उसमें पंडित जी साहब भी कल कह रहे थे कि कछु काम में सर है उसे हमारे, ऐसी तो हमेशा होत रहे. नहीं कछु सर है काज तेरा, मंगत राय की भावना में लिखा है. तो बात ठीक है कि वो वाली निर्जरा, लेकिन हम यहां जिस निर्जरा की भावना कर रहे हैं, जिस निर्जरा की अनुपेक्षा कर रहे हैं, जिस आश्रव संबर की अनुपेक्षा कर रहे हैं, वो क्या चीज, क्या सिर्फ हमें उपाय करना है या कि कोई चिंतन भी करना. तो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इनडायरेक्ट हुआ करती. जैसे हमने किसी चीज के बारे में सोचा कि ये पेन है और ये टूट फूट जाएगा, और मेरा इससे जो लगाव होने वाला था वो इस तरह की चिंतन करने से शायद कम होगा, और डेफिनेट है कि कम होगा. जो आदमी ये जानता है कि कल के दिन ये टूट फूट जाएगा, मिट जाएगा, मैं इससे जितना ज्यादा अटैच हो रहा हूं, जितना जुड़ रहा हूं, उतनी मुझे तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ये तो कल रहेगा नहीं, इसका नेचर वैसा है. हमने अनित्य भावना में यही तो सीखा है. तो इससे ये तो हो गया, हमारे सोचने से इतना फर्क पड़ गया. अब सवाल ये है कि आश्रम में इस तरह का तो कुछ होने वाला नहीं. वक्रवर्ती आश्रो संबंध इन सब तत्वों को जानता है, सात तत्वों को, लेकिन इसके बाद भी आश्रो रोक पाता है क्या? ऐसा हमने कहीं पर पढ़ा। आश्रो रोकना अलग बात होती है और आश्रो के बारे में समझना अलग बात होती है। यहां पर जो अनुप्रेक्षा है वो आश्रो संवर और निर्द्रा की मात्र सोच लेने की स्थिति नहीं है, इसलिए अनुप्रेक्षा की परिभाषा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विजुअलाइजेशन भी है, जो कि हमने सबसे पहले कहा था कि सिर्फ एक समझ पैदा कर देना ये अनुप्रेक्षा का काम नहीं है, नहीं वास्तविकता को हूबहू सामने दिखा देना। अब जब आश्रो हो रहा है तो मैं देखूं होती हुई आश्रो को और उसमें से कोशिश करूं कि इसे बंद कर सकूं। जैसे ही आप बंद करने की कोशिश करेंगे उसी का नाम तो हम कहेंगे संवर। देख लो आप संवर हो रहा है और संवर जिन भावों से आपने किया है उन्हीं भावों से आपने पुण्य का संवर किया है, तो उन्हीं भावों से आपकी निद्रा भी उसी के साथ होती चली जा रही, ये प्रक्रिया एक साथ चल रही। इसको देखने के लिए अनुप्रेक्षा जरूरी है। इसलिए जब आश्रय तत्व का अपन वर्णन करते हैं या कि आश्रय तत्व को समझते हैं तब वो आश्रय तत्व अलग चीज है, लेकिन आश्रय अनुप्रेक्षा जब अपन करते हैं तो उसमें बात कुछ और हो जाती है। इतना अपने लिए यहां पर आश्रय संवर और निद्रा इन भावनाओं के बारे में, क्योंकि जब भी कोई भावना बनेगी किसी चीज की तब तब करने का मन जरूर हो। भावात्मक व्यक्ति ही करता है, वैचारिक व्यक्ति नहीं करता, ये मैं कल भी मैंने कहा। वैचारिक व्यक्ति विचार करके चुप बैठ सकता है, दूसरे को विचार दे सकता है, क्योंकि विचार का इतना ही काम है, बुद्धि का काम है तोड़ना, हृदय का काम है जोड़ना। बुद्धि विभाजन करती, विश्लेषण करती है, एनालिटिकल होती है, हमेशा एनालाइज करके सब रख देगी। अब उसके बाद आपको क्या ग्रहण करना कि आपके हृदय की बात है। जैसे कई बार अपन चर्चा करते हैं कि आलू ऐसी चीज है या कि गर्म चीजें ऐसी हैं या कि फलानी चीज शाकाहार नहीं है, फलानी चीज मांसाहार है, इस तरह की चर्चा जब करते हैं तो ये तो हो गया एक मेन एटीट्यूड, हमारे जानने का एक तरीका हो गया, हमारे जानने की दृष्टि होगी। अगर जानने की दृष्टि से हमने कर किया होगा, मेन एटीट्यूड अकेला होगा अपना जानने का दृष्टिकोण, तो जान लिया अपन ने, कौन नहीं जानता। कितनी सारी चीजें हैं जो कि हमें नहीं मालूम और आपको मालूम है, जानते हैं। लेकिन उसके बाद आता है डिवोशनल एटीट्यूड, जब हमारा भावात्मक जुड़ाव उसके साथ होना शुरू हो जाता है तब फिर जीवन में परिवर्तन उसी चीज से आना शुरू हो जाता है। बस इतनी सी गुत्थी है और कुछ नहीं। अपन लोगों को जानकारी सब है, अपन बहुत ज्यादा जानते हैं, मेरा तो ऐसा सोचना हर चीज के बारे में, लेकिन जिस तरह जाना जाना चाहिए वैसा नहीं जान पाते। सम्यक दर्शन के साथ जो जानना होता है वो जानना जीवन में परिवर्तन लाता है, और बिना सम्यक दर्शन के जो जानना होता है वो जीवन में परिवर्तन नहीं लाता। मेन बात ये, कुल मिला के आखिरी तक आप मेरे से पूछेंगे तो लास्ट में भी यही कहूंगा, आखिरी दम में भी यही कहूंगा, क्योंकि लिखा हुआ आचार्य, पर अपन इसी दुविधा में है कि अपन इतना जानते हैं समझते। कई बार लोगों की प्रॉब्लम सामने आ जाती है, महाराज जी सब को जाना था, मगर एक ऐसे सुन के बाहर निकले थे कि सब ऐसे हो जाते। अब क्या बताएं हम अपने मन की, तो क्या मजबूर हैं हम? ये मजबूर नहीं है, हम मजबूर इसलिए हो गए क्योंकि हम वैचारिक हो गए, हमने सोच के स्तर तक ही बात को सोच लिया कि इतना हमने सोच लिया है काम हो गया। लेकिन अकेले सोचने से काम नहीं होता भाई, भावना वैसी बनाना पड़ेगी। इसलिए अनुप्रेक्षा का नाम सिर्फ चिंतन नहीं है, अनुचिंतन के साथ साथ भावना का अर्थ है। हम इस चीज को जीवन में अनुभव करके देख रहे हैं, महसूस करके देख रहे हैं, आश्रय क्या है, संवर क्या है, निद्रा क्या है। मैंने आपको एक बार आचार्य श्री का निद्रा के बारे में बताया था कि हमने पूछा था प्रश्न और उन्होंने निद्रा का फौरन बता दिया था किस तरह निद्रा होती। मुझे आज ध्यान आया एक सुबह सुबह कि एक बार ऐसा हुआ था, आपको शायद यहां सुनाया कि नहीं सुनाया, या क्लियर अंदर यहां पर सुनाया होगा, मैं फिर से उस चीज को दोहराता हूं कि ऐसे बहुत थोड़े से साधक हैं आज के समय में जो कि किताब की बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और निद्रा और आश्रय या संवर ये सब चीजें बिल्कुल भावात्मक हैं, आपका सोचने का ढंग बदला और निद्रा होना शुरू हुई। देखना बाहर के कृत्य बदलने से निद्रा शुरू हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बाहर का कृत्य जैसे ही बदला और आपके भीतर की भावात्मकता बदली, दोनों एक साथ होना चाहिए। देखिए द्रव्य और भाव दोनों एक साथ होना चाहिए, बिना द्रव्य के भाव नहीं होता, बिना भाव के द्रव्य तो हो सकता लेकिन बिना द्रव्य के भाव नहीं होता। जब जब ये बात चलती कि हम तो भावात्मक क्रांति कर लेंगे, तो पहले द्रव्यात्मक क्रांति हो चुकी होगी, इसका मतलब जब कोई आदमी शुक्ल ध्यान कर रहा होगा तो ये तो तय है कि वो दिगंबर होगा, उसके बिना शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता। जितनी इतनी छोटी सी बात, इतनी सरल सी बात है, अपन इस चीज को नहीं समझ पाते। जो चीज जिस स्थिति में होगी उसी स्थिति में जाकर के होगी, वो भूमिका तो उसको पहले प्राप्त करनी होगी। तो आचार्य जी जैसे बहुत थोड़े से साधक हैं भैया, जो कि इस तरह के जीवन में अपने पूरे मन को बदल करके निद्रा, उसी चीज से निद्रा करने लगते, जैसे हमने आपसे कहा था कि खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अब तो मजबूरी है और साथ किसी ने कहा इसलिए हमें खड़े होना पड़ा हो, इस तरह की अगर कंडीशन है तो करते हुए भी निद्रा नहीं होगी। और अगर मन नहीं था, कहने से दूसरे के बन गए हैं, फिर भी खड़े होकर के नहीं, मेरा अब आनंद आ रहा है मुझे और मुझे अपनी भावना इस पे लगानी चाहिए, और जिस दिन भावना लगानी शुरू कर दी, निद्रा होने शुरू हुई। क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे ये उधर 80 में मुक्तागिरी का चतुर्मास करके और रामटेक जा रहे थे, तब बीच में जो है, और या तो हो सकता कि मुक्तागिरी जा रहे हैं, एकदम दिमाग से उड़ गई बात, पर बीच में एक जगह ऐसा हुआ कि उत्खेत एक नाम का गांव था उत्खेत, और वहां जाना था, और उसके 9 किलोमीटर पहले से बाइफर्केशन होता था, रास्ता मुड़ता था, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, जो लोग साथ थे वो भी भूल गए, और हम लोग जो है उत्खेड़ के सीधे रास्ते पर 9 किलोमीटर पहुंचने वाले रास्ते पर ना जा करके और अंबाड़ा के रास्ते मुड़ गए, अंबाड़ा से भी उत्खेड़ था, तो हम लोग उस तरफ मुड़ गए और पहुंच गए 9 किलोमीटर शाम को चल करके, पूरी बिल्कुल समझ लो कि हाथ की रेखाएं जब तक दिखती हैं तब तक साधु चल सकता, बस इससे ज्यादा नहीं चल सकता, उसके बाद वहीं बैठना पड़ेगा। 1 किलोमीटर रह गया अंबाड़ा और 1.5 किलोमीटर लगभग, और वो वहीं पर जो है अब बंद हो गया और आचार्य जी वहीं रुक गए, हम सब लोग वहीं पर रुक गए, और वो था एक ठो खलिहान, तो खलिहान वो ज्वार का था, और ज्वार के खलिहान में उन्होंने ऐसे मचान जैसे बना ली थी, 1.5 फीट नीचे पानी वगैरह हो जाता है, और ठंड के दिन ये मान के चले, हाँ वो लौटने का समय था जो हम लोग मुक्तागिरी से लौट रहे थे, नवंबर दिसंबर के लगभग की बात है, और उसमें 1.5 फीट का उन्होंने ऐसा मचान जैसा बना दिया है, और चारों तरफ से आप इमेज करिए बिल्कुल ऐसे ही एक नीचे स्टेज जैसा बन गया, और चारों तरफ से उसमें जो सिट्टे जो है ज्वार के जो बचे रहते हैं उन्हीं से उनने, और इतनी ऊंची बाउंड्री कर दी थी, ऊपर से खुला था और नीचे से, नीचे 1 फीट ऊपर है जमीन समझ लो, उसमें लोगों ने कहा कि ये अच्छा है, खलिहान के बीच में वहां नीचे कहां बैठेंगे, इसमें बैठ जाएं और थोड़ा सा शांति भी रहेगी, अच्छा रहेगा, ये तो चारों तरफ हवा भी थोड़ी रुकेगी, सिट्टे लगे हुए हैं, बंधे हुए थे वो पूरे। खैर उसमें बैठ गए भैया, अब अपन तो उस समय एलक थे, और भी मुनि महाराज जी तो तीन मुनि महाराज जी थे कुल मिला के, तो अपने को समझ में नहीं आया कि नीचे कैसा स्पर्श है, लेकिन महाराज जी लोगों को समझ में आ रहा था, तो वो बार बार जो है वो ऐसा कर रहे थे, इसका मतलब वो सिट्टे जो है वो चुभते थे उसमें। अब रात पूरी मैंने लगभग हो चुकी और नीचे पीछे लगा कर जो बैठ गए, मैंने बैठ गए, अब कोई उठने वाला ऐसी तो स्थिति नहीं कि हाँ ठीक नहीं लग रहा अब दूसरी जगह जाएंगे हम, अच्छा स्पर्श लाओ, तो बैठ गए चुपचाप। अब इतने अकेला नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रात चढ़ी वैसे वैसे ठंड गिरना शुरू हुई, ठंड गिरती है, पानी अकेला नहीं गिरता, ठंड गिरती है, आप कभी बाहर ग्राउंड में बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे गिर रही है, बरस रही है ठंड। तो ठंड जो है गिरना शुरू हुई 10 बजे रात को, गांव के अजैन जो लोग थे उनको मालूम पड़ा कि जैन साधु यहां पर आए हैं, वहां तो जैन घर एक था कुल मिलाकर के, वो बेचारे आए और जैसा तैसा करके, और 10 बजे उन्होंने देखा कि ठंड तो बहुत है महाराज जी, लोगों को ठंड लग रही होगी, बाहर सिट्टे पड़े थे, देखना आप मजा। हम लोग जो है 10 बजे 10:30 बजे और वहीं के वहीं थोड़ा सा विश्राम की दृष्टि से और लेट गए, आचार्य जी लेटे, फिर हम लोग सब लेट गए, और लेटे उस उन्होंने सोचा कि महाराज जी वगैरह कुछ चिटाई वगैरह तो है नहीं, ढकेंगे भी नहीं, और कुछ सिट्टे ऊपर से डाल दे, महाराज जी तो कुछ कहेंगे नहीं, अब देखिएगा उनने अच्छा करने के लिए, और सिट्टे जो है ढेर सारे जितने डाल दो उतने अच्छा रहेगा, सिट्टे डाल दिए। अब ये कंडीशन हो गई कि आप करवट नहीं ले सकते, सब लोग बिल्कुल सिक्के पूरे पूरे ऐसे डाल दिए कि करवट लेना मुश्किल हो गई, क्योंकि करवट लेते तो वो छिल जाएगा बिल्कुल पूरा का पूरा हाथ उसमें ऐसे खरोंच में, तो हिल भी नहीं सकते, वहीं के वहीं पड़े रहे। सारी रात जो है निकल गई, सुबह की सामायिक जो बैठ के करना थी, बैठ के की नहीं जा सकती, जब तक ऊपर का नहीं हटाएंगे तब तक बैठेंगे कैसे, तो चुपचाप वहीं पड़े पड़े आराम से जो है, आराम से कह रहा आराम से जो है सामायिक आमायिक कर ली। उसका जब लोगों ने सवेरे से प्रकाश हुआ सब हटाया, सब निकाला, तो आचार्य जी मुस्कुराते हुए उठे और हम लोग बड़े गमगीन से, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, कोई उसमें वो बात नहीं है, सिर्फ आचार्य श्री के चेहरे पर रोशनी थी, सिर्फ उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा रहती है, बाकी हम सब लोग जैसे रात में बहुत तकलीफ में गुजारी हो, बिल्कुल चेहरे से झलक रहा था। और जबकि ये मान के चलिए कि हमारे और आपके शरीर से ज्यादा डेलिकेट शरीर है आचार्य श्री का, आपने शायद नजदीक से नहीं देखा, केस लॉन्च करने में अभी भी हाथ में कट जाएगा उनके, जबकि 100-200 केस लॉन्च हो चुके होंगे अभी भी, क्योंकि शरीर तो शरीर है, आत्मा की शक्ति अलग होती, शरीर की शक्ति अलग होती, काम चलता आत्मा की शक्ति पर, तो इतना नरम। अब बाहर जब हम लोग निकले तो हम लोगों का मन मालूम क्या कह रहा था कि डांटें साधकों को कि क्या तमाशा है ये, और तुमको इतना भी ध्यान नहीं है कि महाराज जी को किस तरह की तकलीफ होगी और इतने सिट्टे डाल दी ऊपर, इस तरह का मन हो रहा था। और सुबह भक्ति हो गई, आचार्य जी कुछ नहीं बोले और भक्ति करके नमो वरहंताणम और नमोकार मंत्र करके जाने लगे। केवल ऐसे निर्जरा के मौके कब कब आते हैं, धन्य है इन लोगों की तीर्थ कि इनने हमें ऐसा निर्जरा का मौका दिया। और फिर हम लोग निकले हैं और जैसे जैसे धूप बढ़ी है वैसे वैसे जितने स्क्रैच लगे थे उन स्क्रैच में धूप लगने पे ऐसा लगता था कि नमक का पानी डाल रहा है कोई, सारे स्क्रैचेस में इतने पूरे शरीर पर स्क्रैच। लेकिन फिर हम लोगों को भी एक रसायन मिल गया कि ये तो हमारे निर्जरा के लिए उपस्थित हुआ है। इस समय अगर हम समता भाव रखें तो कितने सारे असाता कर्मों की निर्जरा हो जाएगी कोई नहीं जानता। और अगर इस समय हम उनको दोषी ठहराने लगें जिनने वो हित के लिए किया था, उनको दोषी ठहराएं, तो वो तो हित करके और अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा विचार करके उनके प्रति अपना अहित करते चले जाएंगे। भाई इतना सा अनुप्रेक्षा का काम है, अनुप्रेक्षा हमारे भीतर इतना बड़ा काम करके चली जाती है, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया किसी ने कि इस चीज को तुम शांति से सहन करोगे तो ये चीज निकल जाएगी, और अशांति से करोगे तब और डिपॉजिट छोड़ करके चली जाएगी। गुस्सा होने से कितने सारे काम एक साथ होते हैं, सबसे पहले तो बात बिगड़ती है, दूसरी बात कर्म अपना पूरा फल देके जा रहा है, बल्कि और ज्यादा उदीर्णा करके जा रहा है, क्योंकि आप गुस्सा में गुस्सा हुए हो, उदय में क्रोधित हुए हैं, और आगे जाकर के वो अपनी और संस्कार छोड़ के जा रहा है, और हमेशा के लिए आपकी सामने वाले से हमेशा के लिए फ्रिक्शन डाल करके जा रहा, इतने सारी चीजें करके जा रहा। और अगर आप चुप रह जाएं ये कुछ भी नहीं होने वाला, ना अपनी संस्कार छोड़ के जाएगा, ना कोई कर्म बंद आगे करने की गुंजाइश उसमें है, ना कोई बात बिगड़ेगी, ना आगे कोई प्रश्न उठेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा था। इतना सरल है, लेकिन सवाल ये है कि जिस दिन जीवन में ये सोच आना शुरू हो जाए, भावना बननी शुरू हो जाए, उस दिन सरल है, उसके पहले तक तो बहुत कठिन है। और सरल कब होगा, कब आएगा जीवन में, मैं तो एक ही बात फिर कहूंगा, दोहरा दूं उसी को, कि जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, जब तक आपकी श्रद्धा आपके भीतर पैदा नहीं होगी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, तब तक आप इस धोखे में बिल्कुल मत रहना कि जीवन में कुछ शुरू हो पाएगा, कुछ नहीं होने वाला। कितने ही आपको शैवोपशम हो, आप तत्व की फर्स्ट क्लास A1 व्याख्या, मेरे से भी प्यारी व्याख्या आप कर लेंगे तत्व की, सात तत्व की जैसी भूल सातवें अध्याय में दई है रूढ़मल जी ने, बिल्कुल ज्यों की त्यों आप बता दोगे। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं सोचना कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, नहीं, मैं वास्तविक तो बता रहा हूं कि देखो अपन अपने को धोखे में नहीं डालें भैया, उसी चीज को अपन क्यों ना पढ़ें, निषेध थोड़ी है, लेकिन उसको इस तरह से पढ़ें जिससे कि जीवन में कुछ हमारे आए, हमारा सिर्फ इंटेंशन ये। आप ये नहीं सोचना कि ऐसा क्यों कह रहे, नहीं, तत्व चिंतन कब कार्यकारी है मैं ये बता, तत्व चिंतन तब कार्यकारी है जबकि तत्व चिंतन के लिए जो तत्व हमें दिए हैं उन भगवान के प्रति हमारी जितनी श्रद्धा प्रकट होगी तब उनके कहे हुए का हमारे जीवन में कुछ फायदा होगा। नहीं तो कहे हुए का कोई फायदा नहीं है। ये हम ध्यान में रख करके, और अनुपेक्षा में भी यही है कि सबसे पहले हम डिवोट हों, डिवोशनल एटीट्यूड बनना चाहिए। एक आदमी पूरा का पूरा भक्तिमय हो गया। मैं जो ये शब्द कह रहा हूं ना, बहुत सोचने का शब्द है ये, डिवोशनल एटीट्यूड। जिस आदमी का पूरा सोच श्रद्धा से युक्त हो गया, जिसके जीवन में श्रद्धा आ गई, ऐसा नहीं कह रहा हूं, जो आदमी पूरा श्रद्धा की मूर्ति हो गया। देखिए, थोड़ी देर के लिए गुस्सा करके क्षमा कर देना बहुत सरल बात है, लेकिन पूरा का पूरा क्षमामय हो जाना, क्रोध की स्थिति नहीं रहना, अरे क्या बात, आप सोच रहे हैं कि इतना सरल है क्या? भगवान ही हो सकते हैं इसमें तो, ऐसा होने वाले। लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश तो कर ही सकते। तो डिवोशनल एटीट्यूड, पूरी तरह से मैं समर्पित, समर्पण की मूर्ति हो जाना, ये स्थिति अगर हमारी बनती हो। इसी तरह जो है अपना आज वर्तमान में क्या है, नोइंग एटीट्यूड है। अपन पूरे के पूरे बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ज्ञानात्मक हो गए। परमात्मा भी ज्ञानात्मक है, ज्ञान शरीर ही है। अपना शरीर ज्ञान शरीर ही नहीं है, अपना सिर्फ मन जो है ना तर्क शरीर ही है पूरा का पूरा। ये मुश्किल हो गई और कुछ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि इसको तोड़ दीजिएगा, फिर आपके अंदर जो तर्क आएगा, श्रद्धा के साथ जो तर्क आएगा, वो तर्क हमारे लिए जीवन में हमेशा काम आएगा, फिर हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अपन ध्यान रखें कि जब भी अपना निद्रा करने का मन हो, अपन फौरन भावना निद्रा की करें और सारी चीजें छोड़ करके उसी चीज में से, माने पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, कि हमारा अप्रोच विधेयात्मक, कि नहीं इनने क्या किया, मेरे लिए इतना अच्छा उपस्थित कर दिया कि मैं निद्रा कर सकता हूं, ऐसा सोच करके अपन निद्रा करना शुरू कर दें। उसी चीज में से आज कह रहे हैं कि चार गाथाओं में अथ अधिक निर्द्रा कारणम गाथा चतुष्केन आह। कितना उपकार है आचार्यों का, वो बार बार हमें समझाने के लिए कि देखो अगर तुम ज्यादा करना चाहो, जैसे कोई बेटे को अपने समझाता है कि देखो तुम दुकानदारी तो करने लगे, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट किसमें होगा मैं वो बताता हूं तुम्हें आज, अब बहुत दिन हो गए, और ज्यादा प्रॉफिट किसमें होगा ये बताता हूं। ऐसे ही आचार्य महाराज अपने ऊपर कितनी कृपा करके कहते कि देखो निद्रा करना तुमने शुरू कर दी, ज्यादा कैसे होगी बताते हम, अब थोड़ा सा ऐसा और सोचना शुरू कर दो, ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। वही बात है यहां पर, जो विसहदि दुवैनम साहम्य हीनयम चौवसग्गम। दो तीन किताबें हैं लगता है, जिन्यून कसायरियुं तस् हवे निज्जरा व्युला। इतना सब होने पर निद्रा विपुल मात्रा में, बहुत मात्रा में होती है, किसके लिए? जो विषहदि दुवैनम, यह विषहते दुर्वचनम साधर्मिक हीरनम च उपसर्गम जित्वा कषाय रूपम अपि। जो कषाय रिपु को, कषाय के शत्रु को जीत लेता है, और क्या क्या दुर्वचनों को जीत लेता है। किसी ने अगर हमसे चार बातें ऊंची नीची कर ली, तो कर ली, वो कर सकता था भैया, वो कर सकता था इसलिए उसने कर ली। जिसके पास देने के लिए जो होगा वो ही ना देगा, अब है ही नहीं उसके पास कुछ, और प्यारी बात करने की उसके पास कोई है ही नहीं भीतर, तो वो तो कषाय वाली बात करेगा, तो वो दुर्वचन ही कहेगा। जिसके पास अच्छे वचन है वही तो अच्छे वचन कहेगा, जिसके पास बुरे वचन है वो बुरे वचन कहेगा। तो कह लिया तो कह लिया, कोई बात नहीं। अरे वाह, इनने हमसे ऐसी के लिए हम कछू नहीं कह रहे, तो कहो, मगर फिर निर्जरा नहीं हुई है, या हम कहें दिए हमें ओजार कछू नहीं है, जिसको अपन फिर खंडी में कहते कि उजर कछू नहीं कहो, मगर जब हम बैठे हैं निर्जरा करने के लिए, तब तो जरा ध्यान देना पड़ेगा इस बात का कि किसी ने अगर दुर्वचन कह लिए हैं तो हम चुप रहे, हमारा फर्ज है, क्योंकि वो अज्ञानतावश ऐसा कह रहा है। एक जगह कहीं आचार्य महाराज ने लिखा है कि जो हमारे बारे में हमारी निंदा कर रहा है वो हमें जानता नहीं है, अज्ञानी है। जो हमें हमारी आत्मा के स्वभाव को जानता होगा खुदा, तो वो हमारी निंदा कर ही नहीं सकता। ऐसा हम तुरंत विचार करें और दूसरे की अज्ञानता पर क्रोध नहीं किया जा सकता भाई, दूसरे की अज्ञानता पर तो मात्र दया ही की जा सकती है कि देखो इनका कैसा उदय, इनके अज्ञान की कैसी इनकी परिणति कि इनको इतना भी समझ नहीं है कि निंदा करके मेरा अहित नहीं कर रहे, ये स्वयं अपना अहित करते चले जा रहे हैं। किसी की निंदा करने से उसका अहित नहीं होता, ध्यान रखना, जो निंदा करता है उसी का अहित होता। किसी के दुर्वचन सुन करके चुप रह जाने पर जितनी निर्जरा होती है शायद उतना ही कर्म बंध और ज्यादा जवाब देने पर होता है। इसलिए कह रहे कि दुर्वचन अगर कोई कह दे तो शांत रहना, निर्जरा बहुत होगी। और अगर आप दुर्वचन का कोई जवाब, शांति से भी दुर्वचन का जवाब आप देंगे तब भी उतनी निर्जरा नहीं होगी, ये ध्यान रखें। गुप्ति सबसे पहले, फिर उसके बाद समिति। जितनी ज्यादा गुप्ति से होगी फिर उससे समिति कारण है। जब आप गुप्ति नहीं रख पाए पहले तो यही कहेंगे कि चुप रह जाओ, लेकिन फिर सागुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय, ये सब निर्जरा के कारण है, ये सब संवर के कारण है। ये क्रम आचार्यों ने दिया है, गुप्ति के लिए समिति, समिति के लिए धर्म, धर्म के टिकने के लिए अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के लिए चारित्र, ये सब चीजें क्रम क्रम से आएंगी। आपको गुप्ति नहीं समझ रही समिति में आ जाइए, समिति में भी आप गड़बड़ा गए तो जरा ध्यान रखिएगा कि धर्म में तो टिके रहिएगा, धर्म में भी गड़बड़ा गए तो अनुप्रेक्षा में टिके रहिए, चारित्र से भ्रष्ट मत हो जाइए, नहीं तो फिर तो बिल्कुल ही गए आप काम से, फिर निर्जरा बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहला स्टेज है कि हम चुप हो जाए, नहीं है तो फिर हम उस बात को समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ कहें, ऐसा कहें जिससे कि समाधान हो जाए, बात और ना बढ़े तो भी निर्जरा होगी, यहां कह रहे। और एक इसमें बहुत बड़ी बात लिखी है, साधर्मिक हीलनम चा, साधर्मी के द्वारा लगाए जाने वाले अपवाद भी हमें निर्जरा के कारण है, ध्यान रखना। अभी तक तो ये पढ़ा होगा कि साधर्मी के द्वारा अपवाद लगाए जाने पर संक्लेश होता है, लेकिन आज यहां पर कह रहे हैं कि साधर्मी अपना ही व्यक्ति जिसको अपना माना था वो अगर आपके
पर कभी बात कह लेता है तो मन में उतना दुख नहीं होता जो उनसे अपेक्षा जरूरी होती है, जिसके हैं का जैसे हैं, मगर जिनसे अपेक्षा नहीं थी और उनने भी कह दिया ठीक है, अब बातचीत का संसार की मालूम बढ़ गई, अब बातचीत का मालूम बढ़ गई। हम तो सोचते थे कि यहाँ चरण है, नहीं यहाँ भी चरण नहीं है, चरण तो अपने भीतर ही है, ऐसा उसी समय भान हो जाएगा। जब कोई अपना कुछ कह देता तो ज्यादा, आपने कहीं एक जगह पढ़ा कि एक आदमी के ऊपर जब अपवाद लगाया गया तो सब लोगों ने अपवाद लगाया और पत्थर फेंके, जब वो रस्ते से निकला तो पत्थर फेंके। अब मेजॉरिटी जब पत्थर फेंक रही तो उसका एक मित्र ही था, अब मित्र जो है एक अकेले का साथ फेंके तो मित्र मेजॉरिटी के साथ हो गया, और मित्र ने मालूम क्या किया, मित्र ने तो सिर्फ एक तो फूल उठा करके ना उसकी जब फेंक दिया सबके साथ, अब सब दुनिया फेंक रही, पकड़ा फेंक रही अपन कसी ने कसी तो फेंको भैया, नहीं तो जी होना चाहिए तुम भी होती तुम्हारी जरूरत से करना करो। देखो जब विपत्ति आती है, जब विपत्ति आती है तब आदमी कोई नहीं होता साथ में, क्यों, क्योंकि उसको डर लगता है कि ये विपत्ति जो इसके ऊपर आई मेरे ऊपर ना आ जाए अगर मैं इसका साथ जाऊंगा तो। इस वजह से उसने सिर्फ फूल फेंका, और लिखने वालों ने लिखा है कि वो आदमी जहां उसके हाथ से फूल टकराया इतने पत्थर की चोट खाने के बाद भी और सीना ताने चला जा रहा था, लेकिन जैसे उससे फूल टकराया हाथ पकड़ के वहीं बैठ गया, जैसे बहुत जोर से लग गई है। बाकी सब लोग पहुंचे चलने, देखो उसका मित्र भी पहुंचा वहां पर, सबने घेर लिया उसको भी, गिर पड़ा ये तो अब। और फूल लकड़ी लगने से लोगों ने पूछा कि उसने कुछ पूछा कि अच्छे हो, हमने तो तुम्हें सिर्फ एक तो फूल मारा और इसके लोग पत्थर मार रहे, सब तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कहना बस यही तो थी मन में एक ही भाव था जिसकी वजह से अभी तक बर्दाश्त कर रहा था कि एक मेरा मित्र है वो तो मुझे सही मानेगा, लेकिन उसने भी फूल फेंक के ये साबित कर दिया कि वो भी तुम्हें गलत ही मान रहा है, आज जब सबने छोड़ दिया तब उसने भी छोड़ दिया है, इस बात की पीड़ा है पत्थर पत्थर की और उसकी पीड़ा नहीं। इन क्षणों में निर्जरा कर पाना बहुत दुर्लभ होता है, शायद इसलिए लिखा हुआ है कि साधर्मी के द्वारा हीलनम, साधर्मी के द्वारा दोषी साबित किए जाने पर ये सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, निर्जरा के लिए और अधिक निर्जरा के लिए हमें साधन मिल गया और
उस सर्गम उस सर्ग तो चार प्रकार की होती है, इसी को पढ़ने पर कष्ट मुनि है विपुला प्रचुरा विस्तीर्णा निर्विरा कर्मणाम ज्वलनम भवे। उन मुनि महाराज के लिए बहुत अधिक विपुल मात्रा में निर्विरा होती है, किन के लिए कष्ट कष्ट किन के लिए, यह मुनि विषहते क्षमते, जो मुनि सहन कर लेते हैं किन किसके लिए सहन कर लेते, दुर्वचनम जो दुर्वचन को सहन कर लेते हैं उनके लिए निद्रा बहुत होती। अन्नकृत गाली प्रदानम हननम अपमानम अनादरम साधर्मिक अनादरम विचारते। अन्य जनों के द्वारा तो ठीक ही है, साधर्मी के द्वारा भी जो गाली दिए जाने पर हनन मारे जाने पर या कि अपमान अपमान किए जाने पर भी जो उसको सहन कर लेते हैं वे बहुत अधिक मात्रा में निर्जरा करते हैं। ऐसी निर्जरा की ये भावना बन जाए तो निर्जरा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ भावना बनाने के लिए कह रहे हैं कि हम भावना बनाएं कि हमको ये चीज सहन कर रहनी है चुपचाप, तो निर्जरा भावना सही हो गई अपनी। क्या पुनः उपसर्गम देवाधिकृत चतुर्विध उपसर्ग कहते। चार प्रकार का उपसर्ग होता देवताओं के द्वारा होता, पहले हुआ करता था देवता के द्वारा, अब तो देवता के द्वारा भी उपसर्ग की कोई विशेष वो नहीं है क्योंकि देवी आपसे दूर ही रहते, प्रसन्न नहीं है आपके पास कि भैया बिगा आए पहले फिर आप कभी बिगा लें हमारे प्यारे हो गए साफ के वैसे आते हैं। तो देवकृत उपसर्ग भी विशेष नहीं होता पशुओं के द्वारा, अब पशु तो रह नहीं गए वे तो अपन ने सब अपने कब्रिस्तान में डाल रहे थे भीतर, अधिकांश लोग कर रहे हैं अपन तो जय नहीं भैया ऐसी बात ही नहीं समझी थी अपन को और लोग कर रहे हैं तो अपन को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए और हमेशा इस बात का अपने भी गौरव होना चाहिए कि अपन ऐसा नहीं करते। वी वेजिटेरियन हम शाकाहारी हैं ये हमें गौरव से कहना चाहिए। हम दबी दबी क्यों कहते हैं कि जैसे हम बहुत कमजोर हों ऐसा नहीं। अभी एक दिन चर्चा चली थी शाकाहार की, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं हमें गौरव के साथ कहना चाहिए। तो आज वर्तमान में पशु के द्वारा भी उपचार बहुत कम है और प्रकृति के द्वारा, प्रकृति पे तो हमने विजय प्राप्त कर ली। अब अगर तुम गर्मी बरसाओगे ना हम कूलर चला लेंगे, तुम ठंड बरसाओगे बस हीटर है रूम हीटर है हमारे पास और अब तो जो निकला है वो फूक करके हवा भर देते ना उसमें किलो किलो जैसा गद्दे जैसा उसके भीतर घुस जाओ और स्टैंड लगा लो और ऊपर से बिल्कुल हवा रहती है उसमें। वो हमने कहीं सुना था भाई देखो अगर आपको नहीं मालूम हो तो खरीद मत लेना नहीं तो हमसे सुन करके और मुश्किल हो जाए। ऐसे मतलब बहुत सारे साधन है अपन के पास बचने के, अपने को विज्ञान ने निर्जरा से बचने के साधन दिए और धर्म ने सब कुछ जो है ना निर्जरा करने के उपाय दिया है, इतना ही फर्क है। तो तीन प्रकार के उपसर्ग से तो बच गए, एक उपसर्ग भर रह गया जो मनुष्य कृत उपसर्ग है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य पर जितना उपसर्ग हो सकता है आज दुनिया में सबसे ज्यादा यही है। तीन उपसर्ग नहीं है मनुष्य कृत, तब वो कहते हैं कि ऐसे उपसर्ग हो जाने पर भी जो शांत रहते। मुनि महाराज जी के जीवन में तो चारों प्रकार के आते हैं, क्योंकि रास्ते चले जा रहे हैं छाता तो है नहीं और पानी आने लगे ठंड बरसने लगे कुछ भी हो सकता। प्रकृति ग्रत उपसर्ग की तो हमेशा संभावना है और देवग्रत उपसर्ग भी संभव है होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। एक महाराज जी के बारे में सुना था हमने कि आठ आठ दिन की उनकी आंख चली जाती थी और आहार लेना मुश्किल हो जाता था, आंख की रोशनी चली गई तो वहां नहीं ले पाते, फिर दूसरे महाराज जी वगैरह शोधन करके क्योंकि यंग हैं 25-35 साल के थे उस समय की बात है, आठ दिन के लिए रोशनी चली गई फिर आ जाती थी तो मालूम पड़ गया कि ये देव किसी देव के द्वारा ही उपसर्ग है। ऐसे उपसर्ग होते रहते हैं देवकृत उपसर्ग होते हैं। तो पशुओं के द्वारा भी मार दिए जाने पर उपसर्ग हो जाता है, रास्ते से चले जा रहे हैं और इसीलिए तो लिखा हुआ है कि आहार चर्या के लिए जब निकले तब कम से कम 10 हाथ दूर से पशु के गमन करें, एकदम करीब से नहीं करें क्योंकि तो उसकी पूछ भी लग जाएगी तो सिरिंज क्रक छू गए तो अंतराय हो जाएगा और उपसर्ग भी हो सकता। शरीर के लिए बहुत बचा करके रखना चाहिए पड़ता। हम लोगों को इस बात की डांट पड़ती थी कई बार कि तुम लोग गड़बड़ करते हो, सीढ़ी जल्दी क्यों उतरे, अगर मान लो फिसल गए होते तो क्या होता, चोट लग जाती है पर सही कर लेते, बिगड़ा होती बहुत। ध्यान रखो एक बार बिगड़ गया नहीं ये तो पूरी जिंदगी इससे तपस्या नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना है। इसको डैमेज नहीं करना, तोड़ फोड़ थोड़ी करना है इसके बारे में, नहीं इसको तपाना है मात्र, गंजी को फोड़ना नहीं है, नीचे दूध सब बगड़ जाएगा। हाँ गंजी बस गर्म भर हो जाए एकदम रेड हॉट, तो भीतर का दूध एकदम बढ़िया छोड़ करके आ जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। ये स्थिति अपनी है, तो ये हमेशा सावधानी रखने की। निर्जरा के लिए ऐसे साधन मिल जाने पर अगर हम निर्जरा से चूक जाते हैं और सिर्फ शरीर को क्रश करने वाली प्रक्रिया करते हैं तब भी निर्जरा नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। निर्जरा तो बहुत भावात्मक चीज है और भावना जितनी अच्छी होगी उतनी अधिक निर्जरा होगी, जितना सहन शक्ति बढ़ती चली जाएगी मन की उतनी ज्यादा शरीर की सहन शक्ति बढ़ जाती। कहते किम कृत्वा जित्वा जीत करके निग्रह कषाय रुकुम, अपने क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि शत्रु, इन शत्रुओं को जीत करके और जो इन सारी चीजों के आने पर उपस्थित होने पर शांत भाव से सहन कर लेता उसकी बहुत अधिक मात्रा में निर्जरा होती। निर्जरा का अर्थ मालूम आपको क्या होता? शाम शाम होते होते दुकान समेट लेना। बस अगर मेरे से पूछो आप निर्जरा की परिभाषा, शाम होते 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 ना होते मतलब अभी हुई नहीं है और उसके पहले दुकान समेट देना, हिसाब चुकता बंद कर रहा है भैया, ये बंद करने से पहले हिसाब चुकता तो करना पड़ेगा। संबर बंद कर दिया लेकिन कल तक के लिए हम अब नहीं खोलेंगे तो हम हिसाब चुकता कर दें। आगे की गाथा में यही आ रहा है, ऋणमो यन ऋणमो यनम वन, सब लोग नहीं पढ़ रहे, हम दोहरा आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं जितनी बात करूं उतनी आप दोहरा तो सकते हैं, इतनी कठिन लागत हो रही है। ऋणमो यनम वन सगम परी सहम तिवम, पाव फलम मेदम मयाबीजम संचिदम तिवम, मेरे द्वारा ही संचित किया जो पाप है वो उदय में उसका फल है, वो उदय में आ रहा है। ऋण मोयनम व मन्नई, और उस समय ये विचार करना कि अच्छा हुआ उधार लिया था चुपता हो गया। बस जो उपसर्गम परिसहम तिब्बम, जो व्यक्ति उपसर्ग और परिचय जो तीव्र से तीव्र हैं उनके उपस्थित हो जाने पर विचार करता है कि मेरे द्वारा तो ये सब पाप अर्जित हुआ था और पाप अर्जित नहीं पाप किया गया था, और उसी पाप के फल स्वरूप जो है ये आज मुझे मिल रहा है तो अच्छा ही है, वो जो पहले मैंने लिया था वही तो चुकता कर रहा हूं। ऋण मोयनम, ऋण से मोचन मतलब ऋण से छुटकारा मिल जाएगा, मैं चुकता कर रहा हूं। साहब अपने यहां पर एक कहानी ऐसी बहुत पहले की, कोई मुनि महाराज जी बहुत तपस्या कर रहे थे जंगल में और एक ग्वाले ने अपनी गाय उनके पास में जाकर के छोड़ दी, तो मैं तुम तो खड़े हो देखत रहिए हम लौट के आएंगे, है ख्याल आपको? ऐसा हो गया था। तो फिर बाद में जो है शाम को जब वो लौट के आया तो गायें तो गायें हैं, अब कोई ऐसा थोड़ी है कि वहीं बैठी रहेंगी, सब नगरी चली गई। आकर के पूछा, पहले भी नहीं बोले थे वे कुछ कि तुम छोड़ जाओ फिर लड़ा जाओ, सुनी गई पहले भी, और आगे पूछी तो कहां गई तो फिर भी चुप खड़े, तो मैं बोलता भी नहीं, सुनता है कि नहीं सुनता। अब तो जो है बहुत सारी बातें कहना शुरू कर दी, गाली गलौज तक हो गई। हाँ और थोड़ी दूर तक जाकर के वो देख के आ गया, नहीं मिली, फिर उसने बहुत देर उसने तो शायद थोड़ी दूर आगे निकल गई, थोड़ी दूर और आगे गया, जब तक लौट के आया तो देखा कि सब गाय उसके आसपास आके बैठ गई। अरे बहुत चालाक है, बहुत चालाक है ये, इसने सब गायें कहीं छुपा दी थी और अब मुझे जाता देख करके सब वापिस बुला के अब ले जाने की भगने की कोशिश कर रहे थे, हमारी सब गायें ले करके अब देखते हम तो सोच रहे थे तुम कुछ बिल्कुल सीधे साधे हो, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, अच्छा हम अब तुम्हारे कान खोले देते हैं। मनुष्य के ऊपर मनुष्य के द्वारा किया गया उपसर्ग सबसे बड़ा उपसर्ग था। कान में दो कीले लाकर के दोनों तरफ से मुनि महाराज जी के ठोंकना शुरू कर दिए थे, और फिर उसके बाद तो दोनों में वो शांत खड़े हुए हैं। वो अगर चाहते तो अपने तपस्या के बल से और इंद्र को तक बुला सकते थे, ये ध्यान रखना, उनके पास इतनी शक्ति थी, तपस्या उनकी बहुत सघन थी कहते हैं, और लेकिन उन्होंने किसी की आकांक्षा नहीं की, सिर्फ ये अपने मन में शांत भाव से सहन करते रहे। लेकिन स्थिति उस समय बहुत अधिक हुई, जबकि उसे शांति नहीं मिली कि दोनों घुस तो गए हैं, लेकिन दोनों के भीतर जाकर के टकराहट की आवाज नहीं आई, पर उसने दोनों तरफ से और उनको थोपा और भीतर जाके जब टकराहट की आवाज आई, उसी क्षण केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, भगवान भगवान हो गए। लोगों ने पूछा कि आप तो कर सकते थे प्रतिकार, आप तो बुला सकते थे, इंद्र को इंद्र आए, हमने कहा कि आप मुझे बुला लेते, बोले नहीं, हिसाब चुकता कैसे होता, हिसाब चुकता करना था, कुछ दिन रह गया था वो चुक गया, मैं तो हिसाब चुकता कर रहा था, हिसाब चुकता करने में आप परेशानी किस बात की। आप सोच सकते हैं कि इस तरह की भावनाएं हम जब करते हैं तब जो निर्ग्रह होती है उससे मुक्ति होती। भैया अपन थोड़ी मोड़ी निर्ग्रह में ही घबरा जाते हैं कि ऐसे, और अपन चाहते सारे कि मुक्त हो जाए यहां से, लेकिन कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितनी भारी निर्ग्रह करनी पड़ेगी तब जाकर के, क्योंकि हमने बहुत डिपॉजिट करके रखा, बहुत आश्रय करके रखा, कितनी जिंदगियों से हम जोड़ के रखे हैं, उस सबके लिए हमें चुपका करने पड़ेगा। वही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये कर्म पूर्व किए खोटे सहे जो नहीं, इससे तो सोच लिया करे, कई बार ऐसा मन में आ तो जाता, सोच लेते कि भाई अपने में तो करो तो कम, कोई नहीं और कर गए तो अपने बारे तो कोई को करो, कोई को जाने हो जाओ तो बहुत मजा आते, हम तो आपकी तरफ से कर लेते विधान, वो आपको सबको हो जाते, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, किसी के करने से किसी का नहीं होता, वो स्वयं करेगा तब उसका होगा, और हमने ही किया होगा पाप, और आज उधर में आ रहा है, हमें जो भोगना पड़ेगा। इस तरह की दृष्टि अगर बन जाती है तो हमें निर्जरा होना शुरू हो जाती। अपन जीवन में ऐसी बहुत बहुत सारी निर्जरा करें, अपनी भावनाओं को बनाएं, अपनी अच्छी भावनाएं करें, अच्छी भावना करने से बुरी भावना की निर्जरा होती है, और अच्छी भावना करने से और अच्छी भावना बनती है, और एक दिन सब मुक्ति की तरफ हमारा बढ़ना शुरू हो जाता, हमारा रुझान होना चाहिए, लेकिन हमारा रुझान उस तरफ बन जाए इसलिए अनुप्रेक्षा है, हमारा मन उस तरफ बनने लगे इसलिए अनुप्रेक्षाएं हैं। हम सबका मन उस तरफ बदले, हम सबके जीवन में बहुत बहुत निर्ग्रह होकर के उसका दुर्दशय होकर के हमारी मुक्ति हो, इस तरह की भावना अपन करें, और ऐसी भावना के साथ में बोले आचार्य गुरु विद्या सागर। सारे लोग
Oh,
శరణం పౌవ్యా Oh.